नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। पटना मंडल के अधीक्षक पुरातत्वविद गौतम भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री को प्राचीन खंडहरों के बारे में जानकारी दी। दिल्ली में जल संकट लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में टैंकर से पानी के वितरण केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है। आज विश्व सिकल सेल दिवस है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सिकल सेल रोग से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रही है। सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान के साथ साथ बुनियादी सेवाओं की बहाली का कार्य पूरे जोरों पर है। असम में लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने नए परिसर में एक पट्टिका का अनावरण करने के साथ ही एक पौधा भी लगाया। श्री मोदी ने की यात्रा के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पटना मंडल के अधीक्षक पुरातत्वविद गौतम भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री को प्राचीन खंडहरों के बारे में जानकारी दी। उद्घाटन के अवसर पर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तथा अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद थे। कार्यक्रम में 17 देशों के राजदूत भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने नालंदा दौरे से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, यह हमारे शिक्षा क्षेत्र के लिए एक बहुत ही विशेष दिन है। नालंदा का हमारे गौरवशाली अतीत के साथ एक मजबूत संबंध है। यह विश्वविद्यालय निश्चित रूप से शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। दिल्ली में जल संकट लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में टैंकर से पानी के वितरण केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है। अधिकतर जगहों पर टैंकरों के आसपास पानी के लिए लोगों की भीड़ सामान्य बात है। संगम विहार महरोली, वसंत विहार ओखला, वसंत कुंज चाणक्यपुरी, नरेला रोहिणी, उत्तम नगर जनकपुरी, विकासपुरी, मोतीनगर पटेल नगर, छतरपुर करावल नगर, मुखर्जी नगर, गीता कॉलोनी, कृष्णनगर तथा सहद्रा सहित कई इलाकों में अब भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इसके कारण दिल्ली में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र भी पानी की कमी से प्रभावित है। परिषद के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए दिल्ली सरकार पर टैंकर और टेंडर माफिया को बेचने तथा उस पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। उन्होंने लोगों और आवासीय कॉलोनी के संघों से पानी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि हरियाणा की भाजपा सरकार राजनीतिक साजिश के तहत दिल्ली की पानी आपूर्ति रोक रही है। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कल मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वजीराबाद में यमुना नदी सूखने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी रोक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार सिकल सेल रोग से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रही है। आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर श्री मोदी ने इस बीमारी पर काबू पाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष सरकार ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया था और वह इस संबंध में जागरूकता पैदा करने, व्यापक जांच, रोग का जल्द पता लगाने और उचित देखभाल सहित अनेक पहलुओं पर काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार शीघ्र निदान को बढ़ावा देने, उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करने और रोगियों की देखभाल बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान के साथ साथ बुनियादी सेवाओं की बहाली का कार्य पूरे जोरों पर है। मंगम जिले के लाचुंग और चुंगथांग के प्रभावित इलाकों में फंसे करीब 1300 पर्यटकों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। मंगम के जिला अधिकारी हेम कुमार छेत्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पर्यटकों को निकालने का कार्य आज तक पूरा कर लिया जाएगा। असम में लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 15 जिलों में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कल रात करीमगंज जिले में भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई। करीमगंज जिले के सभी स्कूल आज और कल बंद रहेंगे। गुवाहाटी शहर में कई जगहों पर जल जमाव की खबर है। बाढ़ प्रभावित कई जिलों में सड़क संचार बाधित है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने वेस्ट कमेंग, पापुमपारे और लोअर दिबांग वैली जिलों में रेड अलर्ट, 9 जिलों में ऑरेंज और बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। कासिंगचा क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ से NH415 का एक हिस्सा बह गया, जिससे राजमार्ग के निर्जली बंदरद्वार खंड पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। इसके मद्देनजर राजधानी ईटानगर जिला प्रशासन ने निर्जली से बंदरद्वार तक राजमार्ग को बंद करने और सड़क की बहाली तक की अवधि के लिए गुमतो रोड से यातायात को डायवर्ट करने का आदेश दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत को कल से इस महीने की 21 तारीख तक लू से आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने कहा कि चूंकि पश्चिमी विक्षोभ देश के उत्तरी हिस्से को प्रभावित करता है, इसलिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में छिटपुट आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में आज तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की उम्मीद है। श्री जेनामणि ने कहा कि कल शहर में 1969 के बाद से जून महीने की अब तक की सबसे गर्म रात दर्ज की गई और सफदरगंज में 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। श्री जेनामणि ने कहा कि आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि अल नीनो कम हो रही है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पर उन्होंने कहा कि अगले 5 दिन तक मॉनसून के मध्य और पूर्वी भारत में आगे बढ़ने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वें संस्करण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर ससान आसन का प्रदर्शन करते हुए एक वीडियो साझा किया। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। वीडियो में आसन के स्वास्थ्य लाभों का वर्णन किया गया है और इसे करने के तरीके के बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि शशांक आसन कब्ज, पीठ दर्द और के राहत और तनाव तथा क्रोध को कम करने में मदद करता है। उच्च रक्तचाप और गठिया से पीड़ित रोगियों को इस आसन को करते समय सावधानी बरतने या इसे न करने की सलाह दी गई है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और यह किसानों की आय बढ़ाने और विकसित भारत के सपने को साकार करने में प्रमुख भूमिका निभा सकती है। श्री पासवान ने कहा कि यह क्षेत्र देश में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। मंत्री ने कहा कि वह अगले 5 वर्षों में सब्जियों, फलों और अन्य उत्पादों की बर्बादी को कम करने पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, गुणवत्ता जांच और वैश्विक मानकों को पूरा करना भी उनकी प्राथमिकता होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय खाद्य पदार्थों को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है और उद्योग को और मजबूत करने की जरूरत है। भीषण गर्मी और 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के कारण 550 से अधिक हज यात्रियों की मौत हो गई है। मिस्र में 320 तीर्थयात्रियों की मौत लू और संबंधित बीमारियों से हुई, जबकि जॉर्डन में राजनयिक सूत्रों ने 60 लोगों की मौत की पुष्टि की है। ये संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।